नमस्कार भारत, तारीख 16 मार्च, दिन शनिवार। मैं हूँ मानसी दाश। न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हुए हमले की कई देशों ने की निंदा, कहा ये मानवता के खिलाफ अपराध।
Today I spoke with Prime Minister Ardern of New Zealand to express the sorrow of our entire nation following the.
इस घटनाक्रम का क्या दुनिया पर भी हो सकता है असर? सुनवाएंगे विश्लेषण।
इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लामोफोबिया का जरूर इसमें एक रोल है, लेकिन इस्लाम से भी बड़ा रेसिज्म भी है, से बड़ा एक इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन भी है। उसमें राइट विंग का जो राइज हुआ है वो सिर्फ इस्लामोफोबिया पर नहीं हुआ है।
होंगी अखबारों की समीक्षा और विवेचना भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में दो मस्जिदों पर हमला करके कम से कम 49 लोगों की जान लेने वाले 28 वर्षीय ब्रेंटन टेरेंट को कत्ल के आरोप में अदालत में पेश किया गया है, जहां उन्होंने कोई दलील नहीं दी है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने देश के बंदूक कानूनों को बदलने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध के पास बंदूक रखने का लाइसेंस था और उसने हमले में 5 बंदूकों का इस्तेमाल किया। क्राइस्टचर्च शहर में ध्वज आधे झुके दिए गए हैं और कई खेल और मनोरंजन आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। मेयर का कहना है कि हमले ने शहर को हमेशा के लिए बदल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, जिसके तहत उनकी देश की दक्षिणी सीमा पर लगाई गई राष्ट्रीय इमरजेंसी खत्म हो जाती। वीटो विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के बाद ट्रंप ने कहा कि यह प्रस्ताव अमरीकियों के लिए खतरा है। गुरुवार को अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप के इमरजेंसी आदेश को रद्द करने के समर्थन में मतदान किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए जरूरी फंड जुटाने के लिए ही यह आपातकाल लगाया है। वाशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक कांग्रेस में वीटो को रोकने के लिए पर्याप्त मत नहीं है। अब यह मामला उच्च अदालत तक पहुंचेगा। अल्जीरिया में पुलिस ने राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बूतेफ्लिका के खिलाफ हुए अभी तक के सबसे बड़े प्रदर्शन के दौरान 75 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को राजधानी अल्जीयर्स की सड़कों पर लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। वो राष्ट्रपति से तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। कई सप्ताह चले प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अगले महीने होने वाले चुनाव भी टाल दिए गए हैं। प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने कहा, हम यहाँ उस गैंग के खिलाफ खड़े हैं जिसने इस देश को ही चुरा लिया है और जो देश को खा रहा है, देश के लोगों को खा रहा है। वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने न इस देश के लिए क्या किया है। देश का क्या होगा इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या होगा इससे भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों हम उनसे कहते हैं कि वो अब यहाँ से चले जाएं? क्योंकि वो जनमत के लायक नहीं हैं। ये थे एक महिला प्रदर्शनकारी के शब्द। दुनिया भर के 10 लाख बच्चों ने अपनी कक्षाएं छोड़कर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। ब्रिटेन से लेकर मॉरिशस और नाइजीरिया से लेकर थाईलैंड तक बच्चों ने सड़कों पर रैलियां निकाली हैं और राजनेताओं से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के मंत्रियों ने बच्चों के स्कूल छोड़ने की आलोचना की है, लेकिन बच्चों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन पर उनका संदेश अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रदर्शन स्वीडन की किशोरी क्रेटा थनबर्ग से प्रभावित हैं। थनबर्ग ने कहा है कि पर्यावरण बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, हम युवा लोगों ने इस संकट को पैदा नहीं किया है, हम तो बस इस दुनिया में पैदा हुए हैं और अचानक अब हमारे सामने इतना गंभीर संकट है जिसके साथ हमें जीवन भर रहना होगा। हमारे बच्चों और बच्चों के बच्चों को भी इसे झेलना होगा। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे और इसलिए ही हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जुड़े हर उस व्यक्ति का वीजा नकार देंगे या रद्द कर देंगे जो विदेश में तैनात अमेरिकी बलों पर लगे आरोपों की जांच कर रहे हों। उन्होंने कहा कि वीजा प्रतिबंध अमरीकी सहयोगियों पर अदालत की कार्रवाई रोकने में भी उपयोग किए जाएंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में बीते कल दो मस्जिदों पर हमला हुआ है। एक बंदूकधारी हमलावर ने प्रार्थना के लिए आए लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिस कारण 49 लोगों की मौत हो गई। दुनिया के कई देशों ने और अलग अलग समुदाय के लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों पर हमला करके कम से कम 49 लोगों की जान लेने वाले हमलावर को अब से कुछ देर पहले अदालत में पेश किया गया है। इस हमले का बीभत्स वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया, जिसके प्रसार को तमाम कोशिशों के बाद भी रोका नहीं जा सका और दुनिया भर के लोगों तक ये वीडियो पहुंचा। दुनिया के शांतिप्रिय देशों में गिना जाने वाला न्यूजीलैंड इस हमले से उबरने की कोशिश कर रहा है। क्राइस्टचर्च शहर में लोग हमले की जगह पर फूल रखकर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। इसी बीच देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि इस हमले के बाद देश के बंदूक कानूनों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा,
While work is being done as to the chain of events that led to both the holding of this gun license,
ये हथियार और बंदूक लाइसेंस कैसे हासिल किए गए इसकी जांच के लिए काम किया जा रहा है। मैं एक बात अभी आपसे निश्चित तौर पर कह सकती हूँ, हमारे बंदूक कानून अब बदल जाएंगे। इससे पहले साल 2005, 2012 और 2017 में बंदूक कानून बदलने के प्रयास किए गए थे। अब बदलाव का समय आ गया है। संकट की इस घड़ी में दुनिया भर के नेता न्यूजीलैंड के साथ संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और मदद का भरोसा दे रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
Today I spoke with Prime Minister Ardern of New Zealand to express the sorrow of our entire nation following the monstrous terror attacks.
मैंने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री आर्डर्न से बात की और दो मस्जिदों पर हुए दानवीय हमले के बाद हमारे देश की ओर से दुख जाहिर किया। प्रार्थना के इन पवित्र स्थानों को हत्या के दृश्यों में बदल दिया गया। आप सब देख रहे हैं वहाँ क्या हुआ है। ये भयावह है, बेहद भयावह है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि अमरीका आपके साथ खड़ा है पूरी तरह, उन्हें जो भी जरूरत होगी हम साथ देंगे। वहीं जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के लोकतंत्र पर भी हमला है। उन्होंने कहा,
Es handelt sich hier um einen perfiden Angriff auf Betende.
ये धर्मस्थल में प्रार्थना कर रहे लोगों पर धोखे से किया गया हमला है। ये हमला मुसलमानों को निशाना बनाकर किया गया, लेकिन ये न्यूजीलैंड के लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र समाज पर भी हमला है। हम मुश्किल घड़ी में न्यूजीलैंड के लोगों के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर तुर्की के विदेश मंत्री ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वाले मीडिया संस्थान और नेता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेवलुत कावासोग्लू ने कहा, ये सिर्फ घिनौने लोग ही नहीं हैं जो इस तरह की आतंकवादी घटनाएं करते हैं, लेकिन वो नेता और मीडिया संस्थान जो धर्मों के प्रति नफरत फैलाते हैं और मुसलमानों के प्रति नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर भी लाइव शेयर किया गया था, जिसके बाद नफरत को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दुनिया भर की बड़ी इंटरनेट कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर नफरत को फैलने से रोक पाएंगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों पर हमले की घटना किस ओर इशारा करती है और क्या इस घटनाक्रम का दुनिया पर भी कुछ असर हो सकता है, यही समझने के लिए बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत से बात की और उनसे पूछा कि क्या दुनिया में कट्टरपंथ बढ़ रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जिनको हम एडवांस्ड इकोनॉमीज मानते रहे हैं अभी तक, उसमें जिस तरह के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए हैं पिछले कुछ दशकों में, एक तरह से उन चेंजेस को जो वहाँ की राजनीति है वो दिशा देने में सफल नहीं हो पा रही है, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि फ्रांस या बेल्जियम में, ब्रिटेन में इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन हो रहा है। दूसरी तरफ ये अभी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खासकर न्यूजीलैंड में जो भी हुआ है, वो एक तरह से राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की कैटेगरी में आएगा।
कुछ एक्सपर्ट्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिया की तरफ इशारा करता है ये घटनाक्रम, आप इत्तेफाक रखते हैं या इसे किसी दूसरी तरह से भी देखा जाना चाहिए?
इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लामोफोबिया का जरूर इसमें एक रोल है, लेकिन इस्लाम से भी बड़ा रेसिज्म भी है। सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन भी है, उसमें राइट विंग का जो राइज हुआ है वो सिर्फ इस्लामोफोबिया पर नहीं हुआ है, उसका जो अंडरलाइंग अंडर करंट है वो आपको मिस्टर ट्रंप की इलेक्शन में भी मिलता है, वो आपको जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उसमें राइट विंग के राइज पर भी मिलता है, वो आपको किसी तरह से ब्रेक्सिट में भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर उसी बात को वो ये जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, नेटिविस्ट है, राइट विंगर है, ये दूसरे एक्सट्रीम में ले गया, उसमें अंदर का गुबार है, वो लोगों को मार कर निकाला। इस्लामोफोबिया जरूर इसका एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ इस्लामोफोबिया इसमें जुड़ा हुआ नहीं है।
न्यूजीलैंड के इस घटनाक्रम का जिस तरह से दो मस्जिदों पर हमला हुआ, ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है?
देखिए, कॉपीकैट इफेक्ट तो होता है थोड़ा, और कॉपीकैट इफेक्ट तो हमने उसमें भी देखा था जब वेस्टर्न सोसाइटीज में जब रेडिकल इस्लामिस्ट्स ने अटैक करना शुरू किया था, तो वो तो है ही, लेकिन इससे मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट इन देशों की राजनीति पर होगा कि ये किस तरह से ये देश जो है वो इस बात का सही प्रोग्नोसिस कर पाते हैं, और मुझे लगता है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। अब न्यूजीलैंड में अभी तक ऐसी कोई घटना कभी हुई नहीं थी, बहुत बड़ा शौक है, और न्यूजीलैंड की जो अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी सोसाइटी है, मुझे लगता है उसमें आपकी चिंतन भी होगा, और उसकी कहाँ पर न्यूजीलैंड का जो मॉडल है जो कि अभी तक समझा जाता था कि काफी सक्सेसफुल है, वो कहाँ पर गलत हुआ है।
न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमले से उठे सवाल विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर हर्षवी पंत।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्रिकेट विश्व कप से ठीक पहले एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी। जीत के लिए भारतीय टीम ने कई प्रयोग किए, लेकिन कितने सफल हुए ये प्रयोग? क्या मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन भारत को विश्व चैंपियन बना पाएगा? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 16 मार्च शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त कॉल करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं आज अखबारों में क्या कुछ छपा है। दिलनवाज, आप अखबारों के साथ स्टूडियो में हैं और पहले पन्ने पर दिख रहा है न्यूजीलैंड की खबर सभी अखबारों में है।
जी बिल्कुल, नवभारत टाइम्स लिखता है न्यूजीलैंड में नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग, फेसबुक लाइव किया। और दैनिक भास्कर ने इसी खबर पर लिखा है न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में नमाज को जुटे लोगों पर आतंकी हमला, बांग्लादेश क्रिकेट टीम बचकर निकली। दैनिक भास्कर ने हमले में मारी गई एक महिला की तस्वीर भी प्रकाशित की है और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है, उसमें ये महिला हेल्प मी कहते हुए दिख रही थी। इसके अलावा एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो भारत और म्यांमार ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इंसर्जेंट्स पर हमले किए हैं सीमा के पार। अलग अलग अखबारों में इस खबर को अलग अलग तरीके से पेश किया है। इसके अलावा फ्रांस जैश सरगना मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करेगा, ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। और भारत में चुनाव का माहौल है, मेरे हाथ में है जनसत्ता और इसका शीर्षक है देश में गरमाया चुनावी माहौल, जोड़ तोड़, गठबंधन, बंटवारा। और अगर बात दिल्ली की हो तो कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 7 सीटें भाजपा की झोली में। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर को आगे बढ़ा रहा है
जी
अखबार। इसके अलावा मेरे हाथ में आज का अखबार है, मैं पलट के देख रहा हूँ द इंडियन एक्सप्रेस, और इसमें जिक्र है हाईकोर्ट के एक फैसले का जिसमें कहा गया है कि सरकार किसी सरकारी कर्मचारी के एक्स्ट्रा मैरिटल यानी विवाहेतर संबंध के आधार पर उसे बर्खास्त नहीं कर सकती है। मामला एक आईपीएस अधिकारी से जुड़ा है जिनकी पत्नी ने उनके खिलाफ जो है शिकायत की थी और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पाकिस्तान ने हड़पी करतारपुर गुरुद्वारे की ज़मीन, ये खबर भी आज कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। लिखा गया है धड़ल्ले से अतिक्रमण पर भारतीय अधिकारियों ने जताया कड़ा विरोध। और भारतीय क्रिकेटर श्रीशांत पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा लिया गया है, ये 6 साल पहले उन पर प्रतिबंध लगा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, ये खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने कॉल सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, चुनाव आयोग से शिकायत की है, इससे जुड़ी भी खबर अखबारों में आज पढ़ने को मिल रही है। जी मानसी
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद दिलनवाज पाशा। और अब चलते हैं विवेचना की तरफ। भारतीय साहित्य में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपन्यास और कविता के साथ साथ फिल्म लेखन में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनमें से एक हैं महाभारत जैसे लोकप्रिय धारावाहिक के पटकथा और संवाद लेखक आधा गांव और टोपी शुक्ला जैसी कालजयी उपन्यासों के रचयिता डॉक्टर राही मासूम रजा। राही की 27वीं पुण्यतिथि पर सुनिए रेहान फजल की विवेचना।
आज से अगर उसका नाता नहीं जोड़ पाते तो इसके बनाने से कोई फायदा नहीं। रद्दन, मैंने उसको लिखना इसलिए कबूल किया कि मैं जानता था कि मैं इसको कंटेम्पररी बना सकता हूँ और इसको हिंदुस्तान के गुजरे हुए कल को हिंदुस्तान के आज से जोड़ सकता हूँ।
ये आवाज है महाभारत धारावाहिक के पटकथा लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा की। राही के साहित्य को पढ़ने वाले शायद इस बात पर एतराज करेंगे कि राही को मुख्य रूप से महाभारत धारावाहिक के पटकथा लेखक के तौर पर ज्ञात किया जाए, लेकिन ये भी एक सच है कि महाभारत के संवादों और पटकथा ने उन्हें अमर बना दिया। भारत के करोड़ों लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी जरूर थी, लेकिन राही ने इसे हर घर में पहुंचा दिया। शुरू में जब बी आर चोपड़ा ने राही को महाभारत लिखने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये बात किसी तरह समाचार पत्रों में छप गई। राही मासूम रजा के सबसे नजदीकी दोस्त कुंवर पाल सिंह उनकी जीवनी में लिखते हैं।
जब बी आर चोपड़ा ने घोषणा की कि राही मासूम रजा महाभारत के संवाद लिखेंगे तो उनके पास पत्रों की झड़ी लग गई, जिनका मूल स्वर था कि सारे हिंदू मर गए हैं क्या जो एक मुसलमान से महाभारत लिखवा रहे हैं। चोपड़ा साहब ने ये सभी पत्र राही के पास भेज दिए। राही की एक कमजोर नस थी, वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बहुत बड़े अध्येता थे। अगले दिन उन्होंने चोपड़ा साहब को फोन किया। चोपड़ा साहब, महाभारत अब मैं ही लिखूंगा, मैं गंगा का बेटा हूँ, मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता कौन जानता है।
मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की, ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की।
राही मासूम रजा का जन्म 1 अगस्त 1927 को गाजीपुर में हुआ था। 11 साल की उम्र में राही को टीबी हो गई, जो उस समय असाध्य रोग था। बीमारी के बीच उन्होंने घर में रखी सारी किताबें पढ़ डाली। उनका दिल बहलाने और उन्हें कहानी सुनाने के लिए कल्लू काका को मुलाजिम रखा गया। राही ने खुद माना है कि अगर कल्लू काका न होते तो उन्हें कहानी की सही पकड़ कभी ना आती। राही के भांजे और जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट नदीम हसनैन याद करते हैं।
हम लोग गर्मियों की छुट्टी में अपने नानिहाल जाया करते थे गाजीपुर। मेरी सबसे पहले की जो यादें हैं वो वहीं की हैं, और वहाँ मैंने राही साहब को घर में तो कुर्ता पायजामा पहने देखा और हल्के से लंगड़ा के वो चलते थे, इसलिए कि उनको पैर में पोलियो था। बहुत नफीस उर्दू बोलते हुए और बड़ी उम्दा भोजपुरी बोलते हुए, और बाहर मैंने उनको हमेशा शेरवानी और अलीगढ़ी पजामे में देखा, और शेरवानी भी मैंने कभी रंगीन नहीं देखी उनको, हमेशा वो एक क्रीम कलर की शेरवानी पहना करते थे। चश्मा हमेशा वो काला लगाया करते थे, हालांकि उनके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उसके बाद मुहर्रम में मैंने उनको मजलिस पढ़ते हुए देखा, जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो एक तो वो कभी मेंबर पर नहीं बैठते थे, वो ज्यादातर खड़े होके और माइक के ऊपर जैसे तकरीर होती है उस तरह से होती थी, लेकिन उनको कोई मजहब से कुछ खास लगाव नहीं था उनको।
राही ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और वहीं से अपनी पीएचडी की थीसिस भी लिखी।
लोगों का ये ऐसा मानना है कि मजाज के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर शख्सियत थे, खास तौर खवातीन में जो उनकी पॉपुलरिटी थी वो फिनोमिनल थी। उनकी जो ये हल्का सा जो लंगाहट थी उसमें भी एक तरह का वो हुस्न तलाश कर लिया करती थी बहुत सी लड़कियां उसके अंदर भी। तो इस तरह से वो राही साहब अलीगढ़ में, और वहीं पर उनकी मुलाकात उनसे हुई जो अब उनकी मौजूदा वाइफ हैं। लेकिन राही साहब कुछ चीजों में बहुत ही नॉन कम्प्रोमाइजिंग थे, और उनको उर्दू डिपार्टमेंट में भी उनके बड़े इख्तलाफात थे कुछ लोगों के साथ, इसलिए भी उनको बड़ा अनफॉर्चुनेट हालात में छोड़ना पड़ा।
राही का रुझान शुरू में शायरी की तरफ अधिक था, उपन्यास लेखन की तरफ उनका ध्यान बाद में गया। एक बार अली सरदार जाफरी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में राही मासूम रजा को कुछ इस तरह याद किया था।
जब सन 1953 ईस्वी में पहली बार मैंने राही को कश्मीर की हसीनो जमील वादी में देखा था तो वो फूल की तरह खूबसूरत था और शायर की शायरी की तरफ रागिब था। आजादी के आते आते उसने शेरो सुखन की दुनिया में अपना एक मकाम बना लिया। उसकी शायरी में उसके अपने लहजे की खनक थी, लेकिन कामयाबी के बावजूद राही ने यकायक शायरी तर्क कर दी। इसके बाद उसकी तख्लीक ने नावल का पैकर अख्तियार किया। उसने हिंदी में कई नावल लिखे, उनमें सबसे ज्यादा मशहूर नावल आधा गांव है।
राही 1967 के आरंभ में मुंबई चले आए, जहां शुरू में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केवल हिंदी के दो साहित्यकारों ने राही की बहुत मदद की।
वो बहुत फैसिनेटेड थे वो फिल्मों से, इसलिए कि जब वो अलीगढ़ में अभी उनकी जॉब थी, वो पढ़ा भी रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने लगातार वो फिल्में देख रहे थे और एक ही फिल्म को लाइन से दो तीन चार शो में देखते थे वो, और काफी उनके पास लिखने का भी सामान रहता था वहाँ पर, जिससे वो बैठ के वो कुछ नोट्स भी लेते थे अपने। तो जाहिर है कि उनके जहन में ये चल जरूर रहा होगा कि मुझे अल्टीमेटली जाना है बॉम्बे में ही। स्ट्रगल तो उनको काफी करना पड़ गया था, इसलिए उनका ये कहना था कि वो दो लोगों के बहुत शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे, वो धर्मवीर भारती और कमलेश्वर के। इन लोगों ने उनको बहुत सहारा दिया, और जिस वक्त उनका कोई जरिया आमदनी भी नहीं था वहाँ के ऊपर उस वक्त, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि कमलेश्वर जिस मैगजीन को एडिट करते थे उसमें वो एडवांस में उनको पेमेंट कर दिया करते थे, ताकि राही साहब को किसी तरह से वो सर्वाइवल उनका हो सके। और उन्हीं लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस भी किया कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, और बाद में फिर उनके ताल्लुकात फिर बी आर चोपड़ा ग्रुप वालों से हुआ, राज खोसला से हुआ, फिर बाद में वो लोग सब फिल्में लिखवाने लगे उनसे।
अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। कुछ ही दिनों में राही की गिनती मुंबई के चोटी के पटकथा लेखकों में होने लगी। उनके मुंबई के दिनों को याद करते हुए उनके बेटे नदीम खान, जो कि खुद एक बड़े सिनेमा फोटोग्राफर हैं, बताते हैं।
जहाँ रहते थे, अभी मेरा छोटा भाई रहता दानिशान से ताज के पास में, छोटा सा फ्लैट था, ढाई कमरे का, और यान मिया उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था, हमेशा। ये मैं आपको फिल्मी बात नहीं बता रहा हूँ। जो आए दस्तर खान दोपहर को बिछता था, जो दाल रोटी होती थी, 10-15 लोग कैसे भी हो, बरकत इतनी थी कि खाना वो, और ऐसे ही शाम को होता था। मैं तो FTIR का हूँ, तो मेरे क्लास फेलो थे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी वगैरह, डेविड, तो इनको जब कहीं कहीं इनको अच्छा खाना खाना होता था तो बहाना बना के हमारे यहाँ आ जाते थे। बहुत जल्दी उठने वालों में से थे, और वो जो चाय जो पीते थे मालूम नहीं और कोई पी सकता नहीं, पी सकता इतनी पीती चाय, ना शक्कर हो ना दूध, लेकिन वो पीते थे। उनकी चाय उनको बहुत जरूरी थी, सुबह शुरू कर लेंगे। उनकी कमाल की बात ये रहा नहीं है कि उन्होंने आज तक होटल का कमरा नहीं देखा। अमूमन ये फैशन बन गया था कि राइटर हो फलानी जगह होटल बुक करो, वहाँ पर प्रोड्यूसर पैसे देगा, और तीनों वहाँ पे दारू भी चल रही है वगैरह वगैरह। अपने कमरे में उनका, हमारा छोटा सा जो घर था उसके हॉल में गाँव तकिया बिछा के जमीन पे लेट के, और एक साथ पांच पांच छह छह स्क्रिप्ट लिखते थे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोने में हमारी अम्मा को कबाड़ियों का बड़ा शौक था उस जमाने में, आपको याद होगा 70 में मेहंदी हसन साहब भी फैशन में थे, तो उनकी गजलें चल रही है, मेरे दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, और इस सब भीड़ भाड़ में इतने सारे साउंड ट्रैक के साथ में वो लिखा करते।
राही मासूम रजा के जीवन को रंगमंच पर चरितार्थ किया है मशहूर रंगकर्मी विनय वर्मा ने अपने नाटक मैं राही मासूम के जरिए। काफी शोध के बाद उन्होंने राही के चरित्र को मंच पर उकेरने की कोशिश की है।
वो लगातार कश्मीरी खमाम पान खाते थे, एंड ही वाज अ चेन स्मोकर, रेड मालब्रो सिगरेट पीते थे, और उनके सामने हमेशा चांदी का पान का डिब्बा हुआ करता था। गौ तकिया बिछी हुई अपने ड्राइंग रूम में, खवालियां चलती रहती थी, दोस्त अहबाब आते थे, लोग मेहमान आते थे, और वो लगातार बात करते करते लिखते थे, और कभी उनका कॉन्सेंट्रेशन था वो बिल्कुल हिला नहीं जिस काम पे वो लगे हुआ करते थे।
राही धर्म को संकीर्ण अर्थ में देखने वाले कट्टरपंथियों के हमेशा विरोधी रहे। राही ने एक बार लिखा था, मैंने ये कहा था और अब भी कहता हूं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर दोनों को गिरा देना चाहिए और वहां एक राम बाबरी पार्क बना देना चाहिए। उनकी एक मशहूर नज्म है, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है।
मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी नस नस में गंगा का पानी दौड़ रहा है, मेरे लहू से चुल्लू भरकर महादेव के मुंह पर फेंको और उस जोगी से ये कह दो, महादेव اب اس گنگا کو واپس لے لو، یہ ذلیل ترکوں کے بدن میں گاڑھا گرم لہو بن بن کر دوڑ رہی ہے۔
راہی کے لیے دھرم نرپیکشتا کا بہت ویاپک ارتھ ہے، ان کے لیے گنگا سب کی ہے، کسی ایک دھرم کی قید میں نہیں۔ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی وصیت۔
میں تین ماؤں کا بیٹا ہوں، نفیسہ بیگم، علی گڑھ یونیورسٹی اور گنگا۔ نفیسہ بیگم مر چکی ہیں اور اب صاف یاد نہیں آتی، باقی دونوں مائیں زندہ ہیں اور یاد بھی ہیں۔ میرا فن تو مر گیا یاروں، میں نیلا پڑ گیا یاروں، مجھے لے جا کے غازی پور کی گنگا کی گودی میں سلا دینا، مگر شاید وطن سے دور موت آئے تو میری یہ وصیت ہے، اگر اس شہر میں چھوٹی سی ایک ندی بھی بہتی ہو تو مجھ کو اس کی گود میں سلا کر اس سے کہہ دینا کہ گنگا کا بیٹا آج سے تیرے حوالے ہے۔
ریحان فضل، بی بی سی، دلی۔
بولے بہار۔
وہاں جو دلی میں سرکار بنی، سرکار بنانے میں بہار کی ایک بڑی بھومیکا رہی ہے۔ ابھی جو دلی کی سرکار ہے، ہم لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں وہ سرکار جو ہے دیش میں لوکتنتر کو ٹھیک سے نہیں چلا پا رہی ہے۔
پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ، راجنیتک پریوگ، جسے دیش بدل جاتا ہے وہ صرف بہار میں ہی ہوا۔
دلتوں کو ابھی تک ووٹ بینک کے علاوہ کوئی تھاٹ بینک لوگ سمجھتا ہی نہیں
کہ جب تک بہار کا کوئی پردھان منتری نہیں بنے گا تب تک بہار کا جو ہے وکاس سمبھو نہیں ہے۔
آپ مجھے بالکل نہیں جانتے ہیں، اور بنا جانے اتنا امید پال لیجیے گا تو پھر مودی کی طرح آپ کو کوئی بیوقوف بنا کر کے چلا جائے گا۔
سننا نہ بھولے رویوار 17 مارچ شام 7:30 سے 8 بجے دن بھر میں بولے بہار۔
اور اب وقت ہے کھیل سماچاروں کا۔
نمسکار، کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں راکھی شرما۔ کرائسٹ چرچ میں موجود بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا نیوزی لینڈ کے ساتھ آج سے ہونے والا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ وہاں مسجدوں میں گولی باری کے مد نظر رد کر دیا گیا۔ جب حملہ ہوا اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم مسجد کے اندر جانے ہی والی تھی۔ ٹیم کے سدسیہ سرکشت ہیں، لیکن موجودہ حالات کے مد نظر ادھیکاریوں نے بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے بیچ ہیگلی اوول میں آج سے ہونے والا تیسرا ٹیسٹ میچ رد کر دیا ہے۔ وہیں آئی سی سی نے بھی اس میچ کے رد کیے جانے کا سمرتھن کیا ہے۔ بنگلہ دیشی ٹیم کے مینیجر خالد مشود ٹیم کے ساتھ مسجد کے باہر بس میں موجود تھے جب یہ حادثہ ہوا۔
ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری بس کچھ ہی دوری پر تھی، بس میں ہم 17 لوگ تھے، ہم سبھی مسجد میں نماز پڑھنے جانے والے تھے۔ ٹیم کے 2 سدسیہ ہوٹل میں ہی رکے تھے، ہم مسجد سے قریب 50 گز کی دوری پر تھے۔ اگر ہم مسجد میں 3-4 منٹ پہلے پہنچے ہوتے تو بھیانک حادثہ ہو سکتا تھا۔
اور وہیں سپریم کورٹ نے کل 2013 کے بی سی سی آئی کی انوشاسناتمک سمیتی کے اس آدیش کو رد کر دیا جس میں کرکٹر ایش شری سنت پر آجیون پرتیبندھ لگایا گیا تھا۔ عدالت نے بی سی سی آئی کے انوشاسناتمک سمیتی سے کہا ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر شری سنت کو دی جانے والی سزا کی اودھی کو لے کر پنروچار کرے۔ بینچ نے سپشٹ کیا کہ اس کے اس فیصلے سے دلی ہائی کورٹ میں شری سنت کے خلاف لمبت آپرادھک کاروائی کے معاملے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دلی پولیس نے نچلی عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوتی دی ہے جس میں آئی پی ایل اسپاٹ فکسنگ معاملے میں شری سنت سمیت سبھی آروپیوں کو بری کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دکشن افریقہ کے آل راؤنڈر جے پی ڈومنی نے وشو کپ 2019 کے بعد ون ڈے کرکٹ سے سنیاس کی گھوشنا کر دی ہے۔ جے پی ڈومنی کے نام انٹرنیشنل کرکٹ میں کبھی رن آؤٹ نہ ہونے کا ریکارڈ ہے۔ کھیل سماچاروں میں فی الحال اتنا ہی،
اور کارکرم میں آپ سے ودا لیں اس سے پہلے مکھیہ سماچار ایک بار پھر دل نواز پاشا سے۔
نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ میں 2 مسجدوں پر حملہ کر کے کم سے کم 49 لوگوں کی جان لینے والے 28 ورشیہ برینٹن ٹیرنٹ کو قتل کے آروپوں میں عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وشیشادھیکار کا استعمال کرتے ہوئے کانگریس کے اس پرستاو کو ویٹو کر دیا ہے جس کے تحت ان کی دیش کی دکشنی سیما پر لگائی گئی راشٹریہ ایمرجنسی ختم ہو جاتی۔ الجیریا میں پولیس نے راشٹرپتی عبدالعزیز بوتفلیقہ کے خلاف ہوئے ابھی تک کے سب سے بڑے پردرشنوں کے دوران 75 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ شکروار کو راجدھانی الجیئرس کی سڑکوں پر لاکھوں لوگوں نے پردرشن کیا۔ دنیا بھر کے 10 لاکھ بچوں نے اپنی ککشائیں چھوڑ کر جلوایو پریورتن کے خلاف پردرشن کیے ہیں۔
ब्रिटेन से लेकर मॉरिशस और नाइजीरिया से लेकर थाईलैंड तक बच्चों ने सड़कों पर रैलियां निकाली हैं और राजनेताओं से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करने की अपील की है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जुड़े हर उस व्यक्ति का वीजा नकार देंगे जो विदेश में तैनात अमरीकी बलों पर लगे आरोपों की जांच कर रहा हो। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।